हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? उसकी आंखों में आग थी और आदित्य बस चुपचाप उसे देख रहा था। जैसे ही झलक ने आसमानों के बीच उड़ते प्राइवेट जेट में आदित्य पर सवालों की बौछार शुरू की, आदित्य हैरानी से उसे देखने लगा। अरे मिस मल्होत्रा, आप क्या कर रही हैं? मेरे पास इन्विटेशन था, मुझे थोड़ी पता था कि आप वहां मिल जाएंगी, उसने सफाई देते हुए कहा। झलक ने तीखी नजरों से उसे देखा। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। बताइए, किसके कहने पर आए थे आप वहां? ये सुनकर आदित्य एक पल के लिए सचमुच चौंका, फिर खुद को संयत करते हुए बोला, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, और फिर ये नेकलेस अब आपका है, मैंने आपके लिए खरीदा है, प्लीज इसे रख लीजिए। झलक ने गुस्से से नेकलेस वापस उसके हाथों में थमा दिया। मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है, और ये फालतू का ड्रामा बंद कीजिए। आगे से मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिए, और जिसने भी आपको मेरे पास भेजा है उनसे मैं खुद जाकर बात कर लूंगी। आदित्य अब सच में उलझ गया था और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा एक बात बताइए, उसने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, अगर मेरा आना आपको इतना बुरा लगा था तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? जब मैंने सबके सामने आपको नेकलेस पहनाया तो आप चाहतीं तो उतार कर मुझे लौटा सकती थीं। जब मैंने हाथ बढ़ाया आप मना कर सकती थीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है, आप किसी को कुछ दिखाना चाहती थीं, शायद अपनी पावर पोजिशन। झलक की पलकें झुक गईं। आदित्य ने बात जारी रखी, देखिए मिस मल्होत्रा, आपकी लाइफ में क्या हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ चुका हूँ कि कुछ गहरे राज हैं जो आपको भीतर से परेशान कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ रहूं, आपकी जितनी हो सके मदद करूं। ये शब्द झलक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। उसने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया, कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। आदित्य उसे देखता रह गया। मैं तो मदद ऑफर कर रहा हूं, फिर ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? उसने झिझकते हुए झलक के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही हाथ रोक लिया। उसी वक्त उसे दादाजी की बात याद आ गई। झलक कभी आसानी से किसी को अपने पास नहीं आने देगी, अगर उसके साथ रहना है तो मजबूती से खड़े रहना होगा, पीछे नहीं हटना होगा। वो चुप हो गया। उधर दूसरी तरफ कुछ देर बाद आकांक्षा को होश आ गया। वो खाली खाली नजरों से चारों ओर देखने लगी। सिद्धार्थ उसके पास ही बैठा था। उसके मन में वही पुरानी घटना घूम गई, जब शादी के वक्त झलक अचानक आ गई थी और सिद्धार्थ ने उससे लगभग बात करना बंद कर दिया था। उस सदमे को वो आज तक नहीं भूल पाई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये बात दोबारा खुद को दोहराए। होश में आते ही उसने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज वो नेकलेस हमारे हाथ से निकल गया। मुझे क्या पता था कि झलक अकेली नहीं आई, बल्कि अपने साथ किसी अमीर शुगर डैडी को लेकर आई है। ये सुनकर कमरे में बैठे सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ का चेहरा तमतमा उठा। आकांक्षा की बात पर नैना तुरंत नफरत से बोली, मुझे भी यही लग रहा है, वरना वो यूं ही इतनी बड़ी बोली कैसे लगवा लेती? जरूर किसी चाल के तहत आई थी। वो लड़का देखा नहीं, साफ लग रहा था किसी अमीर घर का होगा, और उस लड़की ने पहले ही उसे फंसा लिया होगा। कमरे का माहौल एक बार फिर सहर से भर गया, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस खेल को वे चाल समझ रहे थे वो कहानी अभी बस शुरू हुई थी। या फिर, नैना ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, उसने उसे अपनी रखेल बनाकर रखा हो और उसी पर इस तरह से पैसा लुटा रहा हो। वैसे भी अमीरों के ये अजीब शौक होते हैं। अपनी ही बेटी झलक के बारे में इस तरह की बातें बोलकर नैना के चेहरे पर पछतावा तक नहीं था। वहीं सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसके मन में भी संदेह उठने लगे थे। सच में इतनी जल्दी किसी लड़की की जिंदगी कैसे बदल सकती है? 500 करोड़ का नेकलेस यूं ही कोई क्यों देगा? उसके दिमाग में भी वही गंदे ख्याल घूमने लगे। जरूर उसका रखेल होगा या उसने उसे फंसा रखा होगा। लेकिन वहां मौजूद किसी ने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि झलक ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। वो अब इतनी मजबूत और अमीर बन चुकी है कि उनका अंदाजा भी छोटा पड़ जाए, ये बात किसी के मन में नहीं आई। तभी उर्वशी जी ने स्थिति संभालते हुए सिद्धार्थ की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, बेटा अच्छा ही हुआ कि वो नेकलेस किसी और ने खरीद लिया। वैसे भी उसकी असली कीमत 200 करोड़ से ज्यादा की नहीं थी। असली समझदार वही होता है जो वक्त पड़ने पर एक कदम पीछे हट जाए ताकि बाद में लंबी और ऊंची छलांग लगा सके। उन्होंने आगे कहा, अगर हम 200 करोड़ के नेकलेस पर 500 करोड़ इन्वेस्ट कर देते तो ये हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं रहता। और तुम शायद भूल रहे हो, बहुत जल्द बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा होने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी वो अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए अब इन सब बातों को छोड़कर अपने करियर पर फोकस करो, काम बढ़ाओ। आकांक्षा तुम्हारे साथ है ही, अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम तुम दोनों की शादी भी कर देंगे और अब झलक की कोई चाल हम पर नहीं चलने वाली। फिर उन्होंने हल्की आवाज में जोड़ा, जिस आदमी के साथ वो शादी में प्राइवेट जेट से आई थी वही उसका बॉयफ्रेंड या शुगर डैडी होगा, उसी ने सब अरेंज किया होगा, वरना उसके बस की बात कहाँ थी। इन बातों के दौरान रणविजय पूरी तरह चुप बैठा रहा। रायचंद परिवार पहले ही जा चुका था, अब केवल ओबरॉय और खुराना परिवार वहां मौजूद थे। नैना ने जल्दी से आकांक्षा का हाथ पकड़ा और कहा, डार्लिंग तुम अपना ख्याल रखो, चलो यहां से निकलते हैं, हमें ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए। सबने हामी भरी और बाहर जाने का फैसला किया। उर्वशी जी ने रणविजय को इशारा किया कि वो सिद्धार्थ को भी साथ ले आए। आकांक्षा बिना आंखें उठाए सिद्धार्थ को देखे बिना अपनी माँ के साथ चली गई। रणविजय पीछे रुक गया, वो आगे बढ़ा और बोला, सिद्धार्थ अब तुम्हें चलना चाहिए, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। रणविजय कुछ पल उसे देखता रहा, फिर चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन उसके विचार बदल चुके थे। सिद्धार्थ को इस हाल में देखकर भी दिल को सुकून मिल रहा है। झलक ने जो मेरी बेइज्जती करवाई थी उसका एहसास उसे भी हो रहा होगा। उसके दांत आपस में भीज गए। शुरुआत में वो झलक को अपना बनाकर सिद्धार्थ को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा था कि सिद्धार्थ झलक से प्यार करने लगा है। लेकिन तलाक के बाद उसने समझ लिया, खुराना परिवार की इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए उसने आकांक्षा से भव्य शादी करने का फैसला किया और आगे की अपनी योजनाएं भी बना ली। लेकिन जिस तरह झलक बार बार उसके रास्ते में आ रही थी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब उसने ठान लिया, वो झलक के बारे में सब पता लगाएगा, चाहे उसका बॉयफ्रेंड कितना ही अमीर क्यों ना हो, जरूरत पड़ी तो वो उसकी जान तक ले लेगा। उधर दूसरी ओर सिद्धार्थ सीधे उस नेशनल लेवल ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने वालों के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही वे खड़े हो गए। यस मिस्टर खुराना, बताइए सर, सिद्धार्थ ने सीधे कहा, मुझे आदित्य राणा की पूरी डिटेल चाहिए, वो कहां से आया, अभी कहां ठहरा है, सब कुछ। ये सुनकर आयोजकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोले, सर हम वीआईपी लिस्ट मेंबर्स की पर्सनल डिटेल किसी को नहीं दे सकते, हम सॉरी हैं लेकिन हम ये जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। आदित्य की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई, और मामला अब यहीं रुकने वाला नहीं था। सिद्धार्थ पहले से ही गुस्से में भरा बैठा था। आयोजकों के इनकार करते ही उसने बिना देर किए अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए बोला,
मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जितना कहा है उतना करो, मुझे वो पूरी फाइल अभी और इसी वक्त चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि सामने खड़े लोग सचमुच घबरा गए। कपूर और उनकी टीम के बाकी सदस्य हड़बड़ा गए, किसी ने पानी का गिलास उठाया, किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा, माहौल एकदम तनाव से भर गया। अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी सिस्टम खोला और वीआईपी रजिस्ट्रेशन फाइल्स निकाल ली। कुछ ही पलों में उन्होंने आदित्य राणा और झलक से जुड़ी बेसिक फाइल्स सिद्धार्थ के हाथों में थमा दी। फाइल में झलक की एक तस्वीर लगी थी, नाम झलक, बस इतना ही। नीचे कुछ बेहद सीमित जानकारी, मोबाइल नंबर जो अब स्विच ऑफ था, एक अस्थायी ईमेल आईडी और इनवाइटेड गेस्ट का टैग। लेकिन कहां से आई, कहां रहती है, उसका पूरा नाम क्या है, किस कंपनी से जुड़ी है, कुछ भी दर्ज नहीं था। ये देखकर सिद्धार्थ का चेहरा और सख्त हो गया। उसने पन्ने तेजी से पलटे, फिर एक झटके से पूरी फाइल बंद की। ये मजाक है, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले ही पल उसने फाइल जमीन पर फेंक दी, कागज बिखर गए, कुछ भी काम की जानकारी नहीं है इसमें। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। इतना अमीर, इतना प्रभावशाली, इतने कॉन्टैक्ट्स, फिर भी वो झलक का असली पता तक नहीं लगा पा रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था, कैसे हो सकता है, वो मेरे सामने खड़ी थी और आज मैं ये भी नहीं जानता कि वो रहती कहाँ है। झलक की पहचान अभी भी एक रहस्य थी, उसका नया सरनेम क्या है कोई नहीं जानता, वो किस बिजनेस में है कोई नहीं जानता, वो अचानक इतनी ताकतवर कैसे बन गई कोई नहीं जानता। सिद्धार्थ की मुट्ठियां फिर से भींच गईं। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर झलक है कहां और वो बन क्या चुकी है। और ये सवाल अब उसके अहंकार को भीतर से जलाने लगा था।